తత్ర జిజ్ఞాసు సజ్జనో శ్రీమద్ భగవద్ గీతాకే ఆత్మ సంయమ యోగః నామక ఛఠే అధ్యాయ కా 37 से 45 श्लोक पर्यंत योग भ्रष्ट के विषय में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के परस्पर प्रश्नोत्तर का जो प्रसंग है उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम तीन श्लोक में अर्जुन ने यानी कि 37 से 39 श्लोक के द्वारा अर्जुन ने जो उनके मन में योग भ्रष्ट के विषय में जो संदेह हुआ था भगवान श्री कृष्ण को बताया और कहा कि हे कृष्ण एतत् मे संशयम्, ये मेरे मन में यह संशय है कि जो योग भ्रष्ट है उसकी क्या गति होगी। छिन्न अभ्रम की भांति क्या उसका नाश हो जाएगा या सदगति होगी या दुर्गति होगी। चेतुम अर्हसि अशेषतः, आप जो है भगवान पूर्ण रूप से उसका छेदन करने में समर्थ है तो आप उत्तर दीजिए मेरे को। तो अर्जुन का ये जो योगी के प्रति जो नाश की आशंका विषयक जो प्रश्न है उसका भगवान श्री कृष्ण 40वें श्लोक से परिहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो 40वें श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा कि पार्थ नैव इह न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। इह लोक में भी अपकीर्ति रूप विनाश नहीं होगा और अमुत्र कीटादि रूप या दुर्गति रूप विनाश नहीं होगा। परलोक में भी कीटादि गति रूप दुर्गति रूप विनाश नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने जैसा शास्त्र में उल्लेख है तदनुसार ही उन्होंने संन्यास किया है और यह संसार से विरक्त है। गुरु का उपसदन किया हुआ है, वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, मनन निदिध्यासन कर रहे हैं और ये करते हुए अल्पायु के कारण शरीर छूट गया तो ऐसा जो योग भ्रष्ट है भगवान कहते हैं कि उसका नाश नहीं हो सकता है। इह लोक में उसकी अपकीर्ति नहीं होगी और परलोक में उसकी दुर्गति नहीं होगी। दोनों प्रकार से उसका विनाश नहीं होगा। उसमें भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध में हेतु बताया, ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम न गच्छति। इस श्लोक के उत्तरार्ध में देखे भगवान कहते हैं ही का अर्थ होता है क्योंकि वो कल्याणकृत। भगवान कहते हैं जो कल्याणकृत होते हैं उनकी कश्चिदपि किसी भी अवस्था में दुर्गति नहीं हो सकती है। कल्याणकृत का अर्थ है जो शास्त्र में कहे गए साधन को जो कर रहा है, शास्त्र समर्थित साधन का जो अनुष्ठान कर रहा है उसका किसी भी प्रकार से इहलोक में या परलोक में उसका विनाश या दुर्गति नहीं हो सकती है। कल्याणकृत का भाष्यकारों ने अर्थ किया शास्त्र विहित कारी। शास्त्र में जिस प्रकार से मोक्ष के साधन बताए गए हैं तदनुसार ही जो कर्मानुष्ठान कर रहा है, क्योंकि शास्त्र जवाबदारी लेता है, ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो भी साधन करे, जो भी कर्म करे, उपासना करे, व्रत करे, जप करे, तप करे, वो शास्त्र विहित करे। शास्त्र में जिस प्रकार बताया है और शास्त्र में बताए गए साधन के अनुसार जो महापुरुष उपदेश करते हैं उनके कथनानुसार मनुष्य को सत्कर्म करते रहने चाहिए। यद्यपि ये बात शास्त्र में कही गई है किंतु वर्तमान काल में हालत यह है कि शास्त्र का स्वयं अध्ययन करने वाला बहुत कम मिलता है। और उसका कारण है कि हमारे यहां जो भी शास्त्र है वो सब संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। देखिए हमारा मूल ही समाप्त हो गया है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है उसका आधार क्या होता है? उसका फाउंडेशन होता है। यदि आप ऊपर से जो है गिराने के लिए प्रयत्न करेंगे ना तो गिराते गिरते नीचे आते तो बहुत आयास हो जाएगा। किंतु चालक व्यक्ति क्या करता है? उसको नीचे से काट देता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। पाया को कमजोर कर दो, फाउंडेशन को कमजोर कर दो तो फिर ऊपर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। विधर्मियों ने आकर के हमारे सनातन धर्म का जो आधार है, पाया है, उसके ऊपर प्रहार किया और हम लोगों को ये भुला दिया गया कि हमारी जो मातृभाषा, धर्म की भाषा, देवताओं की भाषा, शास्त्र की भाषा, मूल भाषा, सनातन धर्म की भाषा संस्कृत है, ये हम भूल गए। हमको भुला दिया गया और हम भूल गए। और इसकी जगह विधर्मियों ने जो शिक्षा पकड़ा दी, कहा कि यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, यही पढ़ो। तो आज हालत ये है कि 99.99% व्यक्ति को ये पता ही नहीं है, इस बात का बोध तक नहीं है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो हमारी अपनी शिक्षा नहीं है, किसी के द्वारा हम पर थोपी गई शिक्षा है। हमारी शिक्षा तो वैदिक शिक्षा है, जिसमें 14 विद्या का अध्ययन करवाया जाता था, 4 उपविद्या मिलकर के 18 विद्या का अध्ययन करवाया जाता था। उससे होता यह था कि हम इहलोक में भी सुखी होकर के परलोक और मोक्ष तक का मार्ग हम प्रशस्त कर सकते थे, क्योंकि हमारी शिक्षा में इहलोक में मनुष्य को कैसे सुखी होना है वो भी बताया है, और परलोक के लिए साधन, इससे आगे बढ़कर के मोक्ष के लिए भी साधन समेटे हुए हमारी शिक्षा है। और इसकी जगह जो हम लोगों को हाथ में जो थमा दी गई, जो ये वर्तमान शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा, उसका फल तो ऐहिक गारंटी भी नहीं है कि इहलोक में तुम सुखी होवोगे, वह तक वो नहीं बता सकती है कि तुम इस लोक में सुखी होगे कि नहीं होगे। इस शिक्षा के द्वारा धन अवश्य प्राप्त कर सकोगे, शिक्षा तुम आधुनिक शिक्षा यदि कोई पढ़ता है, ग्रहण करता है, तो वो धनवान जरूर हो सकता है, सुविधा संपन्न जरूर हो सकता है, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। जबकि हमारे यहां ऋषि मुनियों ने सुख को महत्व दिया है, सुविधाओं को नहीं। इसलिए देखिए, हमारे यहां सुख की जहां तक बात है तो जिसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं होती है वो सुखी होते हैं, और जिसके पास समग्र सारे संसार भर की साधन सामग्री है, सुविधा के सब साधन है, लेकिन वो सुखी नहीं है। इसलिए महत्व जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने सुख को महत्व दिया है, और वो सुख जो है सुविधा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। नहीं तो जो सुविधा से संपन्न व्यक्ति 24 घंटे सुखी होने चाहिए, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, सर ढकने के लिए कुटिया तक नहीं है, तो वो 24 घंटे दुखी होना चाहिए। इसलिए सबसे जो हमारे लिए अनिष्टकारी जो कुछ यदि है तो ये है कि हम अपनी मूल शिक्षा भूल गए। संस्कृत भाषा से हम कई कोसों दूर चले गए, इसलिए शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का विचार से भी हम इससे और ज्यादा दूर चले गए। इसलिए शास्त्र प्रामाण्य जो है उसके प्रति हम गंभीर नहीं रहे कि जो भी परलोक के लिए, इहलोक के लिए जो साधन हमारे यहां शास्त्र में बताए, उस साधन को करने से इहलोक, परलोक और मोक्ष तक सुखी हो सकते हैं। उस साधन का जो आधार शास्त्र है, उस शास्त्र के प्रामाण्य के प्रति हम गंभीर नहीं रहे, और हमको ये चाहिए था कि हम सुखी हो जाए, इसलिए साधन के प्रति तो हमारा ध्यान रहा, किंतु साधन का जो आधार शास्त्र है उसके प्रति ध्यान नहीं गया, व्यक्तिगत ध्यान नहीं गया। इसलिए आज हालत यह है कि मनुष्य उपासना करता, उसको यह पता है कि उपासना करनी चाहिए, लेकिन उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि ये उपासना शास्त्र समर्थित होनी चाहिए कि मनगढ़ंत होनी चाहिए। इसलिए हालत आज ये है कि उपासना तो बहुत चल रही है किंतु सब मनगढ़ंत चल रही है, मनुष्य बुद्धि परिकल्पित चल रही है। कोई नहीं ये जानता कि इसका शास्त्र में आधार है कि नहीं। पूजा जो चल रही है ये जानते हैं कि पूजा करनी चाहिए, सनातन धर्म में पूजा का बहुत ही महत्व है, पूजा अवश्य करनी चाहिए, देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इस बात का मनुष्य को ख्याल नहीं रहा कि पूजा करनी चाहिए तो शास्त्र विहित शास्त्र समर्थित पूजा करनी चाहिए, इस बात के प्रति मनुष्य गंभीर नहीं रहा। इसलिए पूजा चल रही है लेकिन मनगढ़ंत निराधार और मनुष्य बुद्धि परिकल्पित, किसकी पूजा करनी चाहिए किसकी नहीं है इसका विवेक ही नहीं रह गया, किसको नमन करना चाहिए किसको नमन नहीं करना चाहिए इस बात का कोई भेद नहीं रहा। इसलिए मनुष्य का अनिष्ट इसलिए हो रहा है। यज्ञ दान जप तप सब के बारे में ये हालत है। आज यज्ञ की बात है, हम जानते हैं कि हमारा धर्म जो है यज्ञ प्रधान है, हमारी संस्कृति यज्ञ मूलक है, इसलिए यज्ञ है वो अनुष्ठेय है। अब चलता है कहीं अनुष्ठान तो ये भूल गए कि शास्त्र समर्थित यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए, लेकिन वो बात हट गई और मनगढ़ंत और मनुष्य बुद्धि परिकल्पित साधन होने लगे। मंदिर निर्माण में भी यही हो रहा है, यहां तक कि व्यक्ति दान करता है तो दान में भी मनुष्य जो है वो भ्रमित हो रहा है। आजकल दान करना चाहिए इस बात का तो बखूबी पता है कि दातव्यम, दान देना चाहिए, किंतु उसमें से वो शास्त्र समर्थित जो अंश है वो भूल गए कि दान करना चाहिए तो शास्त्र में जो कहा है तदनुसार किया जाए तब दान का फल मिलता है, ये नहीं रहा। इसके प्रति मनुष्य गंभीर नहीं रहा और दान कर रहा, बाहर से अच्छा लग रहा है, बाहर से वो जो है आपाततः रमणीय भी है किंतु शास्त्र समर्थित है कि विहित निषिद्ध का कोई ख्याल नहीं है, लोग करते जा रहे। इसलिए दान के विषय में भी मनगढ़ंत और मनुष्य बुद्धि परिकल्पित, इससे हमारे सनातन धर्म का बहुत ही बुरा हो रहा है और लोगों में भी जो शास्त्र समर्थित दान है उसको भूल गए और जो लोग कर रहे उसके पीछे लोग करते जा रहे। जप की जहां तक बात है, जप भी जैसे जप करना चाहिए उस विधि का कोई पता नहीं है, और इतना पता है कि जप करना चाहिए, बस भगवान का नाम लेना चाहिए, जपानुष्ठान करना चाहिए, लेकिन उसमें भी मनगढ़ंत और मनुष्य बुद्धि परिकल्पित। कैसे माला पकड़नी चाहिए उसका लोगों को पता नहीं है, सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। एक जगह जाना हुआ, बड़ा कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम के आयोजक जो मुखिया थे वो जप कर रहे थे, उसके हाथ में जो माला घूम रही थी वो देखा, तो धर्म के अलंबरदार कहते हैं, उसको जप कैसे किया जाता है, माला कैसे पकड़ी जाती है, उसका पता नहीं था तो, क्योंकि खुद को पता ही नहीं कि क्या है जप क्या है, बस वो इतना ही जानते हैं, बस माला घुमानी चाहिए, हाथ में माला चाहिए बस। मन घड़ंत और मनुष्य बुद्धि परिकल्पित होने के कारण करते तो है, दिखता भी है करते हुए। कहते हैं लोग धर्मानुष्ठान बहुत कर रहे हैं, आजकल तो बहुत के चल रहा है, लेकिन शास्त्र समर्थित है कि मन घड़ंत है, उसका भी तो विचार होना चाहिए। और शास्त्र फल देने के लिए प्रतिभू है तब जब शास्त्र में जैसे कहा है तदनुसार किया जाए, तब शास्त्र जो है सिक्योरिटी और प्रतिभू जवाबदारी लेता है कि हम फल देंगे। जैसे उस दिन वो दृष्टांत दिया था कि नोट के ऊपर गवर्नर की साइन होती है, तो जो रिजर्व बैंक से जो प्रूव की है वही नोट आप कहीं भी लेकर के बिंदास चले जाओ, उसका मूल्य के अनुसार जो आपको पदार्थ चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट भी तो उससे बढ़िया दिखती है, असली से नकली ज्यादा चमकता है, वो तो बढ़िया लगता है, उसमें हम लोग फंस जाते। अब जब फल नहीं मिलता तब खुद को कोई दोष नहीं देता, शास्त्र को और प्रक्रिया को, देवताओं को दोष देते हैं लोग, कहते ये देवता की मैं इतनी पूजा उपासना कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हुआ, कहते क्योंकि स्वयं का कोई विचार ही नहीं है। और स्वयं का विचार नहीं होने में कारण यह है कि हम खुद शास्त्र का अध्ययन खुद जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर पा, उसका मूल कारण बताया कि ये संस्कृत भाषा में और संस्कृत भाषा से हम बिल्कुल अनभिज्ञ है। इसलिए भगवान ने कहा कि कल्याण कृत जो है, यानी शास्त्र विहित कार्य जो है, भगवान ने बिल्कुल कहा कि जो शास्त्र विहित कार्य है ना, उसकी कभी भी दुर्गति संभव नहीं है, लेकिन शास्त्र विहित कार्य हो तब की बात है, डुप्लीकेट के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए भगवान ने तो कहा जो शास्त्र विहित कार्य यानी शास्त्र के अनुसार कुछ भी थोड़ा भी बहुत करता है, भगवान ने तो दूसरी अध्याय में यहां तक कहा कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, शास्त्र विहित सत्कर्मों का थोड़ा सा भी यदि कोई अनुष्ठान करता है तो वो जो है महान भय से वो बच जाता है। संसार के अंदर महान सबसे बड़ा यदि कोई भय है तो वो जन्म और मृत्यु का भय, इससे बड़ा और कोई भय नहीं है। देखिए संसार में बड़े बड़े जो भूपति है वो डरते हैं तो किससे डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु का भय सबको लगता है। इसलिए जन्म और मृत्यु रूपी भय से वो व्यक्ति रहित हो जाता है जो थोड़ा सा भी धर्म का आचरण करता है, शास्त्र विहित अनुष्ठान करता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन यदि शास्त्र विहित कारी की दुर्गति नहीं होती है, थोड़ा सा भी अनुष्ठान करने वाले की दुर्गति जब नहीं होती है, तो अर्जुन जिसके विषय में तुमने जो प्रश्न किया, योग वरिष्ठ के विषय में प्रश्न किया, वो तो सर्वोत्कृष्ट है, वो तो बहुत आगे बढ़ गया हुआ है, आत्म तत्व का विचार कर रहा है, जो मोक्ष के बिल्कुल समीप है, ब्रह्म ज्ञान के बिल्कुल समीप पहुंच गया है, तो उनकी जो है दुर्गति अर्जुन कैसे हो सकती है। तो उनकी दुर्गति न होवे उसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए अर्जुन जिस योग भ्रष्ट के विषय में तुमने प्रश्न किया है उसकी दुर्गति कभी भी संभव नहीं है। अब ये जो अर्जुन के मन में ये शंका थी, एक बात का यहां एक विचार कर ले। अर्जुन ने प्रश्न करते समय एक बात कही थी कि भगवान इन्होंने उपासना सहित कर्म का फल जो ब्रह्मलोक है उस ब्रह्मलोक फल रूप फल का इसको अनुभव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उपासना सहित कर्म का त्याग कर दिया। अर्जुन ने ऐसा पूछा था, उपासना सहित कर्म फल ब्रह्मलोक है तो ये तो उन्होंने छोड़ दिया है तो उपासना सहित कर्म का फल ब्रह्मलोक का अनुभव उसको नहीं होगा, उस फल का लाभ उसको नहीं होगा। तो देखिए अर्जुन की ये जो बात है वो अविचारित रमणीय है, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो भी साधन किए हैं उस साधन में ऐसे ऐसे साधन है जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में कारणभूत है और शास्त्र भी इस विषय में समर्थन भी करता है। जैसे हमारे उपनिषदों में ये कहा गया है, एक सामवेदी छांदोग्य उपनिषद में एक पंचाग्नि विद्या का प्रकरण है। पंचाग्नि विद्या जिसमें कर्मानुष्ठाता का जब शरीर छूटता है उससे लेकर के वो पुनः शरीर धारण करता है उसके बीच का जो गोल चक्कर है उसमें पांच अग्नि की कल्पना और उसमें पांच आहुति की कल्पना की गई है। उसकी गति में ये भावना करनी होती है, उसको उपासना कहते हैं और वो उपासना का विधान है सामवेदी छांदोग्य उपनिषद में, शायद चतुर्थ अध्याय में ये उपासना है। तो उस उपासना का उल्लेख करके जब श्रुति ने फल की बात कही तब श्रुति ने यह कहा कि पंचाग्नि विद्यायाम य इत्थम विदुः ये चामि अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चि अभिसंभवन्ति। फल श्रुति में यह कहा कि ये जो पंचाग्नि विद्या की उपासना करेगा इतने ही नहीं, इससे अतिरिक्त जो अरण्य में जाकर के श्रद्धा और सत्य का जो अनुष्ठान करता है ये दोनों को अर्चि मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल मिलता है। ऐसा प्रसंग है, जो पंचाग्नि उपासना करता है उसको भी और जो अरण्य में पंचाग्नि विद्या का उपासक गृहस्थी होता है, इसलिए जो गृहस्थी पंचाग्नि विद्या की उपासना करता है और उससे आगे जो वानप्रस्थी अरण्य में श्रद्धा और तपानुष्ठान करता है उस दोनों के लिए फल बताया कि वो अर्चि ही अभिसंभवंती, वो अर्चि मार्ग से ब्रह्मलोक का भागी होता है। तो ठीक है, इन्होंने पंचाग्नि विद्या का फल तो इसके लिए ये श्रद्धा और सत्य जो कहा, पंचाग्नि विद्या के उपासक के साथ साथ जो वानप्रस्थी का उल्लेख किया, वानप्रस्थी जो श्रद्धा और सत्य अरण्य में जाकर के अनुष्ठान करता है, तो श्रद्धा और सत्य ये भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति में कारणभूत साधन है, ये श्रुति से ये बात सिद्ध होती है। अब ये योग भ्रष्ट के जीवन में लो, अर्जुन ने यहां पर जिस योग भ्रष्ट का जो चित्रण किया है उसके जीवन में देखिए, श्रद्धा भी है और सत्य भी है। श्रद्धा भी है और सत्य भी है, क्योंकि श्रवणादि परायण है, और श्रवणादि परायण वही हो सकता है जो श्रद्धान्वित होता है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। तो ये जो योग भ्रष्ट है, जिसकी अर्जुन के मन में जो शंका है गति विषयक, उन्होंने उनके मन में श्रद्धा बिल्कुल है, तभी तो वेदांत का श्रवण कर रहा। और उपनिषद में और भी कहा, श्रद्धा सत्य और जो भी साधन चतुष्टय में जो षट संपत्ति बताई है, शम दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति भी है उसके पास। शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा भी, समाधान भी। शांतो दांत उपरति तितिक्षु श्रद्धा समाहितो भूत्वा आत्मनिव आत्मानं पश्येत। ये भगवती श्रुति भी यही कह रही है कि जो साधन परायण है उसके अंदर श्रद्धा अवश्य होती है और सत्य का अनुष्ठान भी है। सत्य यानी अनृत भाषण का अभाव, ये सत्य का अर्थ होता है। अनृत वदन का अभाव ही सत्य, यानी झूठ नहीं बोलना। तो ये तो श्रवण साधन परायण है, वो क्यों कर झूठ बोलेगा? उसको इस संसार में क्या चाहिए कि जिससे कि वो झूठ बोलेगा? झूठ का आश्रय तो उसको लेना पड़ता है जो संसार परायण है, संसार आसक्त है, उसको झूठ का परायण आश्रय लेना पड़ता है। ये झूठ क्यों कर बोलेगा? इसलिए सत्य का सत्य रूप साधन भी इसमें है, और दम वगैरह भी है, तितिक्षा भी है, समाधान है, ये सब। और सत्य शब्द का अर्थ यदि ब्रह्म ले लिया भी है, सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म भी होता है, तो वेदांत श्रवणादि रूप जो है सत्य ब्रह्म का चिंतन भी ये योग भ्रष्ट ने किया है। इसलिए ये जो इन्होंने श्रद्धा सत्य इत्यादि साधन का अनुष्ठान किया है, और ये साधन जो है ब्रह्म लोक की प्राप्ति में कारण बताए गए हैं। वेदांत वाक्य विचार देखो, हमारे यहां ये कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन और कुछ भी न करे, प्रतिदिन वेदांत का विचार करे, वेदांत का श्रवण करे यदि, तो उसके लिए अतुल्य फल बताया है। ऐसा कहा कि जो है कृष्ण चांद्रायणादि जो व्रत जप है वो करने से जो फल मिलता है वो वेदांत वाक्य विचार करने वाले को वो फल। तो इन्हें वेदांत विचार तो किया ही है, इसलिए अवश्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन इस योग भ्रष्ट के जीवन में अवश्य विद्यमान। इससे अतिरिक्त ये योग भ्रष्ट ने संन्यास भी किया है, साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर इन्होंने संन्यास भी किया, इसलिए इसके जीवन में संन्यास भी है, श्रद्धा भी है, सत्य भी है, और ब्रह्म विचार करते करते शरीर छूटा ना, तो ब्रह्म विचार भी है। तो देखिए, ये एक तो हुआ संन्यास, एक हुआ श्रद्धा, एक हुआ सत्य और ब्रह्म विचार, चार साधन हुए, चारों लक्षण इसमें है। अब जबकि ये बताया कि चारों में से यदि एक भी हो तब वो एक साधन जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति में कारण है, तो ये योग वरिष्ठ के जीवन में तो ये चार साधन जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में कारण बताए गए, इसलिए फिर ये योग भ्रष्ट के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन इसकी तो क्या कहे, ये तो अवश्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कारण, ब्रह्मलोक की प्राप्ति का फल जो है उसको अवश्य मिलेगा। और दूसरी बात क्या कहे, हमारे यहां तो एक स्मृति वाक्य है, स्नातं तेन समस्त तीर्थ सलिले सर्वापि दत्तावनीर यज्ञानां चकृतं सहस्रमखिला देवाश्च संपूजिता संसारा च समुद्रिता स्वपितर स्त्रीलोक्य पूज्योऽप्यसौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात। देखो ये स्मृति क्या कहती है कि जिसका ब्रह्म के विचार में एक क्षण के लिए यदि मन स्थिर हो गया, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए ब्रह्म विचार में जिसका मन स्थिर हो गया, ब्रह्म विचार में जो संलग्न हो गया, याद रखियो ब्रह्म विचार में, ब्रह्म में नहीं किंतु ब्रह्म के विचार करने में, ब्रह्मानुभव तो बहुत दूर की बात, ब्रह्म का विचार करने में जिसका एक क्षण के लिए यदि मन लग गया तो उसको क्या फल मिलता है, तो तेन समस्त तीर्थम स्नातम, समस्त तीर्थ सलिले स्नातम। तो समझ लो कि उन्होंने हमारे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ बताए गए और उन तीर्थों में जाकर के जो स्नान करने के अनंतर जो फल मिलता है वो फल मानो इन्होंने प्राप्त कर लिया। देखिए तीर्थों में जाकर के स्नान करना बहुत कठिन बात है, कई लोग जाकर के भी स्नान नहीं करते, कई लोग भी अपने हरिद्वार में आते अपने आश्रम में हफ्ता 10 दिन 15 दिन रहते, पूछा कि गंगा जी में स्नान किया कि नहीं, तो कहते हैं स्वामी जी पानी ठंडा बहुत है, कहते तो अभी तक स्नान नहीं किया, तो कह नहीं ठंडा पानी बहुत है, हम तो गर्म पानी चाहिए बताओ। तो कई लोग तो जो है वहां हरिद्वार आते घूमने के लिए आते, किस लिए, जबकि होना क्या, होना क्या चाहिए, तीर्थ यात्रा करने, भावना कैसे होनी चाहिए, तीर्थ यात्रा के हम जाकर के तीर्थ करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, जप दान व्रत सब सब करेंगे, तर्पणादि करेंगे, श्राद्ध करेंगे वगैरह करेंगे, उसके लिए जो है घर छोड़ करके तीर्थ में जाया जाता है, वहां तो बस घूम करके आ गए, कर घूम लिया बस, तो वो यात्रा नहीं हुई, वो घूमना ही हुआ फिर तो। तो समस्त तीर्थ सलीले तेन स्नातम, जिसका एक क्षण के लिए जिसका मन ब्रह्म विचार में यदि संलग्न हो गया तो समझ लो कि उन्होंने सभी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया, उसको फिर वहां जाए या न जाए आवश्यकता, जाना चाहिए, लेकिन फल इस एतत् सदृश है। और आगे क्या कहा, सर्वापि दत्तावनी, सर्वापी अवनी दत्ता। देखो जिसका एक क्षण के लिए मन ब्रह्म विचार में लग गया तो उन्होंने सर्वापी अवनी दत्ता। सर्व अवनी कहते हैं पृथ्वी, समग्र पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है वो एक क्षण के लिए ब्रह्म विचार करने वाले को ये फल मिलता है, स्मृति वाक्य कहता है। और देखो यज्ञानाम चक्रतम, हमारे वेदों में जित जो जो यज्ञानुष्ठान बताया है, मानो यज्ञानाम चक्रतम उन्होंने जो है सब यज्ञ जो है उन्होंने कर लिए। और अखिला देवाश्च संपूजिता, हमारे यहां जितने भी देव है उन देव की पूजा करने से जो फल मिलता है समझ लो कि ये ब्रह्म विचार में जिसका मन संलग्न हो गया उसको ये सब फल मिलता है। देवाश्च देखो हमारे यहां 33 कोटि देव की पूजा चली आ रही, कोटि के अर्थ करोड़नी प्रकार, ठीक है नहीं? 33 देखो, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 8 वसु, कितने हुए 31, और प्रजापति और वशटकार, ये दो मिलकर के 33 हो गए। इन 33 देवताओं की पूजा जो है हमारे यहां सनातन धर्म में की जाती है कि वैदिक और पौराणिक पद्धति से हमारे यहां पंचदेव की पूजा भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जो प्रचलित की गई है, शिव विष्णु गणेश शक्ति और सूर्य, और वे इसी में जो जिसका अंतर्भाव है ऐसे कई एक देवता की पूजा हमारे यहां जो है चली आ रही है। इंद्र आदि देवताओं की पूजा यज्ञ के माध्यम से हवि प्रदान करके की जाती है। तो समझ लो कि अखिला देवाश्च संपूजिता, समग्र देवताओं की पूजा करने से जो लाभ मिलता है वो इसको मिल जाता है। और क्या कहे, संसाराच्च समुद्रिता स्वपितरः, इन्होंने अपने पितरों को संसार से मानो उद्धृत कर दिया, यानी उनका उद्धार कर दिया। यानी अभिप्राय ये है कि पितरों का जो उद्धार है उस समय श्राद्ध तर्पण और पिंडदान कारण होता है, जो मनुष्य के लिए पुत्र के लिए जो अवश्य कर्तव्य होता है। पुत्र का अर्थ ही होता है पूम नाम नरकात्रायते थे पुत्र, नरक से बचने के लिए ही पुत्र की उत्पत्ति की जाती है, मोह ममता के लिए नहीं। तो पुत्र का कर्तव्य कि श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि के द्वारा जो है ऋण पाकरण कर उससे जो है पितरों का उद्धार हो जाता। तो पितरों के उद्धार में जो कर्तव्य जो क्रिया है उस क्रिया का फल है पितरों का उद्धार। तो समझ लो कि उन्होंने संसाराच्च समुद्रिता स्वपितर, इन्होंने अपने पितरों का भी मानो उद्धार कर लिया, और त्रैलोक्य पूज्योप्यसौ, ये जो जिसका एक क्षण के लिए ब्रह्म के विचार में जिसका मन स्थिर हुआ वो त्रिलोकी में ये पूजनीय हो जाता है। त्रैलोक्य असौ पूज्य, किसके लिए कहा कि यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, जिसका एक क्षण के लिए ब्रह्म के विचार में मन स्थिर हुआ। अब अर्जुन बता, ये जो योग भ्रष्ट है ये तो जो है ब्रह्म विचार कर ही रहा है, और ब्रह्म विचार करते करते अल्पायु के कारण उसका शरीर छूट गया, तो इसके जीवन में तो इतने सत्कर्म हैं श्रद्धा तपादी है, इसलिए उसकी दुर्गति संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति में कारणभूत सभी साधन विद्यमान है, इसके लिए इसलिए भगवान ने इसकी शंका का जो है उच्छेद करते हुए आगे कहा। अर्जुन के मन में ये संदेह हो जाए कि ठीक है भगवान, योग भ्रष्ट जो है शुभ कृत है, योग भ्रष्ट के जीवन में ऐसे ऐसे बड़े बड़े शुभ कर्म है, तो जैसे भगवान आपने कहा कि उनका यह लोक में भी और परत्र रहने परलोक में भी उसका नाश नहीं होता है, ये जो आपने कहा ठीक है भगवान, तो होता क्या है ये बताइए, किम भवति। तो भगवान जो है वो 41वें श्लोक में ये योग भ्रष्ट का ये शरीर छूटने के बाद उसकी क्या गति होती है, ये भगवान 41वें श्लोक से बता रहे। उस 41वें श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दृशम्। भगवान श्री कृष्ण इन दो श्लोकों के माध्यम से योग भ्रष्ट की मृत्यु के उपरांत कौन सी गति होती है ये बता रहे हैं। इसमें विकल्प किया है भगवान ने, और भगवान ने ये जो दो विकल्प किया है, एक की ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के पश्चात श्रीमान के घर में जन्म, और एक का योगी के घर में जन्म, ये दो विकल्प बताए। तो उसका कारण ये है कि योग भ्रष्ट भी दो प्रकार का है, एक तो जो योग मार्ग में प्रवृत्त है, सर्वकर्म का संन्यास जिन्होंने कर दिया है, वेदांत श्रवणादि साधन करते हुए अल्पायु के कारण बीच में ही जिसका शरीर छूट गया, एक वो, और दूसरा योग मार्ग में प्रवृत्त होकर के सर्वकर्म का संन्यास करके वेदांत का श्रवणादि करते हुए जिंदा है, किंतु पूर्व उपचित भोग की वासना के कारण, वासना प्रबल वासना के प्रादुर्भाव के कारण वेदांत का श्रवणादि साधन करते करते जो विषयों में फंस गया, और विषयों में फंस गया यानी संसार में फंस गया हो, तो वो भी तो योग भ्रष्ट है, यानी संसार में अनुरक्त हो गया हो, तो एक वो, और दूसरा जो है वैराग्य दृढ़ है किंतु अल्पायु के कारण शरीर छूट गया, और दूसरा वो वैराग्य की मंदता के कारण श्रवणादि साधन करते करते बीच में जो है संसार के भोग में फंस गया। जैसे भागवत में दृष्टांत आता है सुभरी ऋषि का, बड़े तपस्वी ऋषि थे, जल क्रीड़ा करते हुए मत्स्य और मछली को देख लिया, तो सोभरी ऋषि के मन में भी संसार का भोग करने की इच्छा हुई, और उन्होंने राजा के पास जाकर के उनकी कन्या मांगी, और उससे विवाह किया वगैरह जो है बात भागवत में आती है। तो होता है ऐसा, भोग में जब लिपट जाता है तो ये साधन छूट जाता है, वो भी तो योग भ्रष्ट है। तो इन दोनों को ध्यान में रख करके भगवान उत्तर देंगे। ओम।